राधारानी हमेशा कृष्ण
नालम वयम ते महिम अनुवर्णने या देव वर्यः अवतार मायया येन अंगा जातस्य च पौरुषाणि ते वाचपतीनाम् अपि बभ्रमू धिया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवतार मायया येनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि वा भ्रमर्धिया नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवततार मायया वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि वा ब्रह्मोधिय नालं वयं ते महिमानुवर्णने यो देववर्यो अवततार मायया वेनांग जातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपवभ्रमभ्य अनुवाद एवं तात्पर्य इसी भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की ना अलम समर्थ नहीं वयम हम ते तुम्हारी महिम महिमा यश अनुवर्णने वर्णन करने में यह जो देव भगवान वर्यः सर्वप्रथम अवतार अवतरित हुआ मायया अंतरंगा शक्ति अथवा हेतु की कृपा से वेन अंग राजा वेन के शरीर से जातस्य उत्पन्न होने वाले की च तथा पौरुषाणी महिमा में कार्य ते तुम्हारा वाचः पतीनाम महान वक्ताओं का अपि यद्यपि वब्रमू चकरा जाते हैं दिया मन। अनुवाद दोहराएंगे। गायकों ने कहा हे राजन आप श्री भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं और उनकी अहेतु की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें। यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए हैं तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का वर्णन नहीं कर सकते। तात्पर्य इस श्लोक में माया का अर्थ है आपकी अहेतु की कृपा से। मायावादी चिंतक माया शब्द की व्याख्या मोह या असत्य कहकर करते हैं किंतु माया का एक दूसरा भी अर्थ है वह है अहेतु की कृपा। माया के दो प्रकार हैं योग माया तथा महामाया। महामाया योग माया का विस्तार है और ये दोनों ही माया भगवान की अंतरंगा शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। जैसा कि भगवद्गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति आत्ममाया से उत्पन्न होते हैं, अतः हमें इस मायावादी व्याख्या को कि भगवान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर में प्रकट होते हैं अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान तथा उनका अवतार पूर्णतया स्वतंत्र है और वह कहीं और सर्वत्र अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं। यद्यपि राजा पृथु राजा वीरेन के मृत शरीर से उत्पन्न थे, किंतु तो भी वे भगवान की अंतरंगा शक्ति से श्री भगवान के अवतार थे। भगवान किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं, कभी वे मत्स्य अवतार के रूप में तो कभी वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने के लिए मुक्त और स्वतंत्र हैं। कहा जाता है कि अनंत मुख वाले अनंत भी भगवान की महिमा का वर्णन नहीं कर पाते, यद्यपि वे अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हैं, तो फिर ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं का क्या कहना। कहा गया है कि श्री भगवान शिव वरिंच नूतम है, अर्थात वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा सदैव पूजित हैं। यदि देवताओं के पास भगवान की महिमा को व्यक्त करने के लिए भाषा नहीं मिल पाती तो भला अन्य लोग यह कैसे कर सकते हैं। फलतः सूत तथा मागध जैसे गायक राजा पृथु के विषय में कुछ भी कहने में अशक्त थे। उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यद्यपि हम भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते तो भी शुद्ध होने के लिए आवश्यक है कि ऐसा करने का प्रयास करें। इसका यह अर्थ नहीं कि यदि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हम करें ही नहीं, अपितु जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हम में से हर एक को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं तो भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेगा। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव
राधारानी हमेशा
अद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादात् सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
हरे कृष्णा। तो आप सबका आज की भागवत कक्षा में हार्दिक स्वागत है और विशेष धन्यवाद देंगे हम इस ग्रेस राष्ट्रीय तो जी का, जिनके प्रयास से आपके सामने ये सुंदर व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है, तो राष्ट्रीय प्रभु जी का डिजाइन किया हुआ है, तो उनका विशेष धन्यवाद। तो ये श्लोक बहुत सुंदर है। आज का अध्याय का नाम है वंदी जनों द्वारा राजा पृथु की स्तुति। पिछले कुछ श्लोकों में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे राजा पृथु और अर्ची माता वेण की बाजों के मंथन से निकलते हैं तो
माघद और सूत आदि गायक राजा पृथु का गुणगान कर रहे हैं और राजा पृथु उनको पिछले अध्याय में मना कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे सूत आदि भक्तों, इस समय अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्य का गुणगान कैसे कराऊं। और फिर पिछले श्लोक में मैत्रेय मुनि कह रहे हैं कि राजा पृथु की इस विनम्रता को देखकर ये गायक और ऋषिगण बहुत प्रसन्न हुए और ऋषिगणों की आज्ञा के अनुसार गायकों ने अपना गुणगान जारी रखा। और वो गायक लोग कह रहे हैं, हालांकि ये श्लोक तो मैत्रेय मुनि ने बोला है, लेकिन मैत्रेय मुनि बोले हैं कि ना अलम वयम, ना अलम का मतलब हम समर्थ नहीं है, वयम हम, ते तुम्हारी महिमा अनुवर्णने, आपकी महिमा का वर्णन करने में हम समर्थ नहीं है। कौन कह रहे हैं ये लोग? गायक कह रहे हैं। क्यों नहीं है? या देव वर्यो अवतार माया, क्योंकि आप अपने अहेतु की कृपा से आपने अवतार लिया है। हालांकि दिखने में आप कहां से उत्पन्न हुए? वेनांग जातस्य, क्या अवतार लिया? आप तो एक मृतक शरीर से उत्पन्न हुए हैं, दिखने में ऐसा लग रहा है कि वेनांग जातस्य च पौरुषानि से, लेकिन फिर भी आपके जो महिमामय कार्य है, वाचस्पति नाम जो बड़े बड़े महान वक्ता हैं, वो भी चकरा जाते हैं, वर्गमुद्धि है, उनका भी मन चकरा जाता है, वो आपका गुणगान नहीं कर सकते। तो फिर हमारे क्या स्थिति है? दिखने में आप लग रहे हैं कि आप मृतक वेण के शरीर से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन आप भगवान के अवतार हैं, आप अहेतु की कृपा से यहाँ प्रकट हुए हैं, और हम लोग बड़े बड़े वाचस्पति, बड़े बड़े वक्ता आपका गुणगान नहीं कर सकते, तो हमारी क्या शक्ति है कि हम आपका गुणगान कर सके। तो श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत से अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण बातों को चर्चा की है। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं, यो देव वर्यो अवतार माया, और यहाँ पे माया का उन्होंने शब्दार्थ किया है अंतरंगा शक्ति अथवा अहेतु की कृपा से। भगवान की दो तरह की शक्ति है, बहिरंगा और अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति को कहते हैं महामाया और अंतरंगा शक्ति को कहते हैं योग माया। और उसी योग माया का एक दूसरा अर्थ है अहेतु की कृपा, क्योंकि योग माया कौन है? स्वयं राधा जी, और राधा जी भगवान की कृपा शक्ति है। तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा प्रकट होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो बद्ध जीव इस धराधाम में आते हैं वो महामाया के अंतर्गत आते हैं, प्रकृति के नियमों के अधीन होते हैं, लेकिन जब भगवान आते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त आते हैं वो आत्ममाया भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं, यानी कि अहेतु की कृपा से आते हैं, यानी हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो जब भगवान हम बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं तो हम जैसे बद्ध जीव इसको कैसे समझ पाए? तो अक्सर जो मायावादी हैं वो इसका मतलब ये ले रहे हैं कि भगवान का शरीर भी माया का बना हुआ है, भगवान भी हमारी तरह एक साधारण जीव हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर भगवान भी हमारे तरह साधारण जीव होते तो भगवान बचपन से ही भगवान ने दिखा दिया, जब भगवान प्रकट हुए देवकी के गर्भ से तो भगवान नंगे खून से लथपथ रोते हुए प्रकट नहीं हुए। भगवान कैसे प्रकट हुए थे? सर्वभूषणों से आभूषित थे, पीतांबर वस्त्र डाला हुआ था, कौस्तुभ मणि थी, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए, सर पर सुंदर बाल थे, चतुर्भुज था, और आते ही वो अज्ञानता में नहीं थे, उन्होंने आते ही देवकी और वसुदेव को उपदेश दिया, ज्ञान दिया। और फिर भगवान छोटे ही थे तो उन्होंने कितने असुरों का वध कर दिया। ऐसा नहीं है कि भगवान धीरे धीरे उनमें गुण विकसित हुए, उनके अंदर शक्ति आई, फिर उन्होंने शक्ति का प्रदर्शन किया। नहीं, भगवान बनते नहीं है, भगवान हर समय भगवान ही रहते हैं, चाहे वो शिशु के रूप में हो चाहे बड़े हो जाएं। वैसे तो हमेशा ही वो नूतन रहते हैं, अब गोलक धाम में तो हमेशा ही नवयौवन के रूप में रहते हैं, लेकिन इस भाव लीला में वो शिशु के रूप में प्रकट होकर वो शिशु की जो लीला करते हैं वो इतनी मधुर है कि वो असली गोलक धाम में भी वो उन लीलों का हम आस्वादन नहीं कर सकते। तो ये भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान यहाँ पे प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान गीता के श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान ने कहा है तो कौन सा श्लोक है गीता का आप जानते हैं जिसमें भगवान ने बोला कि मैं आत्म माया से प्रकट हुआ हूं? अजोपि सन अव्यात्मा भूतानि ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, चौथे अध्याय का श्लोक है। अजोपि, हालांकि मैं अजंता हूं, अजोपि सन अव्यात्मा, और मैं ऐसी आत्मा जो कभी नाश नहीं होंगी, अव्य आत्मा, व्यय मीन्स जो नाश हो जाए, अव्य आत्मा जो कभी नाश नहीं होंगी, अजोपि सन अव्य आत्मा भूतानि ईश्वरोपि सन, और मैं सब भूतों का ईश्वर हूँ, प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्म माया, फिर भी अपनी अंतरंगा प्रकृति के कारण मैं प्रकट हो रहा हूं। लेकिन बद्ध जीवों के लिए समझना मुश्किल है, इसलिए भगवान कह रहे हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति से अर्जुन, इसको जो समझ गया कि मेरा जन्म कर्म दिव्य है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो बद्ध जीवों के लिए यह समझ पाना अति कठिन है कि भगवान कैसे अवतार ले रहे हैं, और भगवान यहां पे वेण के शरीर से उत्पन्न हो रहे हैं, तो भगवान कहीं से भी उत्पन्न हो सकते हैं। अंडा तरस्तम परमाणु चय तरस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि, भगवान तो सब जगह विद्यमान है, तो जैसे उनकी इच्छा होगी तभी वो प्रकट हो जाएंगे, सब जगह विद्यमान है, भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने पूछा प्रहलाद से क्या तुम्हारे भगवान इस खंभे में है, तो बोला है वो तो सर्वत्र है, तो हिरण्यकश्यप हंसा, अरे इस खंभे में कैसे विष्णु हो सकते हैं, जब खंभे को तोड़ा तो उसमें से कौन से निकले, नरसिंहदेव भगवान, तो जब नरसिंहदेव भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं, ब्रह्मा जी ने छींक मारी तो कौन प्रकट हो गए, वरा भगवान, छींक से प्रकट हो गए वरा जी, तो बोले अरे छींक से वरा एक सुवर, और लेकिन वो कौन है, भगवान है, तो एक छींक से वरा जी आ सकते हैं, खंभे से नरसिंह भगवान आ सकते हैं, तो वेण जैसे दुष्ट राजा के मृतक शरीर से भगवान प्रकट नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, कहीं से भी अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के लिए प्रकट हो सकते हैं, तो इसको हमें समझना चाहिए और इसी का हमें गुणगान करना चाहिए। लेकिन बद्ध जीवों के लिए समझना बहुत मुश्किल है, बड़े बड़े देवता शिव जी और ब्रह्मा जी भी इनका अच्छे ढंग से नहीं समझते, वो भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 2 श्लोक में बता रहे हैं, नामे विदु सुर गणा प्रभुवा नाम महर्षया अहम आदि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशः, नामे विदु सुर गणा, कि बड़े सुर गणा सारे सारे देवताओं का समूह भी मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं सबका आदि हूं। हम लोग भगवान को क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान ही अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि वही सब कारणों के कारण है, तो हम उनसे प्रकट हुए हैं, हम उनसे प्रकट गया, हमारी उत्पत्ति भगवान से हुई है, तो जब वो हमारे कारण है तो हम भगवान को पूर्ण रूप से कैसे समझ सकते हैं, और बिना पूर्ण रूप से समझे हम कैसे उनका गुणगान कर सकते हैं। तो एक कारण तो ये है कि बद्ध जीव क्यों भगवान का गुणगान नहीं कर सकता, दूसरा ये है कि जो हम सब बद्ध जीव हैं ये समय से और परिस्थितियों से, स्पेस एंड टाइम से हम बाउंड हैं, बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान बिल्कुल अनलिमिटेड है, कृष्णा इज अनलिमिटेड, तो वो अनंत हैं और हम सीमित हैं, तो अपने सीमित मन और बुद्धि से असीमित का गुणगान कैसे कर सकते हैं। इसलिए भागवतम के 8वें स्कंद में बताया जा रहा है कि जो जीव जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं, जिनका जीवन का निश्चित सीमित है, वो असीमित का गुणगान कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, हम सीमित हैं, भगवान असीमित हैं। और यहां पे बता रहे हैं कि अनंत शेष, अनंत काल से, अनंत मुखों से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, अनंत काल से, अनंत मुखों से भगवान के अनंत गुणों का गुणगान कर रहे हैं, फिर भी वो गणना करके नहीं बता सकते कि भगवान के कितने गुण हैं। अनंत काल से लगे हुए अनंत शेष, अनंत जीवाओं से गुणगान कर रहे हैं, तभी वो भगवान का गुणगान नहीं कर सकते। अब कल्पना कीजिए कि हमारे को अनंत जीवाएं मिल जाएं, हैं? तो कैसा होगा, हम लोग बद्ध जीव एक जीव को तो कंट्रोल कर नहीं सकते, अनंत जीवाओं से हम अनंत निंदा करें अनंत निंदा करेंगे, तो हमसे एक जीव तो कंट्रोल होती नहीं, अनंत शेष जी के पास अनंत जीवाएं हैं, तभी उनको कम लग रही हैं कि भगवान के इतने गुण हैं, क्या करूं, अभी पूरा गुणगान नहीं हो पा रहा, वो अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। स्वयं संकर्षण भगवान के प्रथम विस्तार बलराम जी, वो अपने आप को अपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि भगवान का गुणगान नहीं कर पा रहा। अरे बलराम जी को छोड़ो, स्वयं भगवान श्री कृष्ण को ये नहीं मालूम कि उनके कितने गुण हैं, है ना आश्चर्य की बात। क्योंकि कृष्ण है अनंत, अनंत का मतलब है कि जिसका कोई अंत ही नहीं है। अंत नहीं है मतलब ये हमेशा उनका विस्तार होता ही रहेगा, तभी तो अंत नहीं है। अगर उन गुणों का विस्तार रुक गया तो वो अंत हो जाएगा, सीमित हो जाएगा। अनंत है गुण, मतलब कि अनंत रूप से उनका विस्तार हो रहा है। तो भगवान के गुणों का अनंत रूप से विस्तार हो रहा है, और भगवान कहने में सर्वज्ञ भी हैं। लेकिन जितना उनको ज्ञान होता है मेरे गुणों का, तब तक गुण और बढ़ जाते हैं। अब गुण और बढ़ते हैं तो ज्ञान भी असीमित है, भगवान का ज्ञान भी बढ़ता है। अब ज्ञान बढ़ता है, गुण और आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में जो वेद प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, वो ये गुणगान कर रहे हैं भगवान का कि भगवान आपके ज्ञान और आपके गुणों में दिव्य स्पर्धा है। कभी ज्ञान आगे बढ़ जाता है, कभी गुण आगे बढ़ जाते हैं। तो भगवान को खुद नहीं मालूम मेरे कितने गुण हैं, तो हम लोग क्या गुणगान कर पाएंगे। देखिए हमें ही नहीं मालूम, जब कृष्ण को ही नहीं मालूम हमारे कितने गुण हैं, तो हम लोग बद्ध जीव सीमित तुच्छ, हम लोग भगवान का गुणगान करने में क्या क्षमता है हमारी, कोई क्षमता नहीं है। भागवत में 10वें स्कंद में ब्रह्म विमोहन लीला के बाद जब ब्रह्मा जी भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं, तो ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थना कर रहे हैं। 10वें स्कंद का 14वें अध्याय का 7वां श्लोक है, उसमें कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ समय के बाद वैज्ञानिक लोग ये जान जाएं कि पूरी भूमि में और पूरे बर्फ में और पूरे प्रकाश में कितने अणु हैं। इसकी गणना हो सकता है कुछ समय के बाद वैज्ञानिक लोग कर ले कि इस पूरी भूमि में कितने अणु हैं, प्रकाश में सूर्य से प्रकाश आ रहा है और अलग अलग तारों से प्रकाश आ रहा है, उसमें कितने अणु हैं और पानी में बर्फ में कितने अणु हैं। हो सकता है इसकी गणना हो जाए, लेकिन फिर भी आपके गुणों की गणना बिल्कुल नहीं हो सकती। और आपके अंदर असंख्य गुण हैं और फिर भी आप अवतार लेते हैं बद्ध जीवों के उद्धार के लिए। तो इस श्लोक की टीका में सनातन गोस्वामी पाद बहुत अच्छी बात बताते हैं। ये श्लोक ऐसा है, उसके पहली दो लाइन ऐसी हैं, गुणात्मने अपि गुणान विमामतु हितावती रस तृणस्य का ईश्वरस्य। वो कहते हैं गुणात्मा, सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान को गुणात्मा इसलिए कहा गया है कि भगवान असंख्य गुणों के भंडार है, और हितावती रस का ईश्वरस्य, वो हम जैसे बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, हित के लिए प्रकट होते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी है, भगवान किस लिए प्रकट होते हैं, धर्म के नियमों की स्थापना करने के लिए। और धर्म के नियमों की जब स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं, तो भगवान अपने असंख्य गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो भगवान अपने असंख्य गुणों को इसलिए प्रदर्शित करते हैं कि हम बद्ध जीव उन गुणों से आकर्षित हों और फिर उन गुणों को हम अपने में विकसित करें। जब भगवान के गुणों को हम अपने में विकसित करेंगे, तब हम इस योग्य बन पाएंगे कि हम भगवान के धाम जा पाए। बात समझ, जैसे भगवान कृपालु हैं, भगवान बहुत दयालु हैं, भगवान बहुत ही कृतज्ञ हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, तो भगवान के अनंत गुण हैं। भगवान किसी पे भी कृपा कर सकते हैं, भगवान भक्त वत्सल हैं। तो जब भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं तो अलग अलग गुणों को दिखा रहे हैं। तो जब हम लीलाओं से आकर्षित होते हैं, भगवान के इन गुणों की चर्चा करते हैं, तो इन्हीं गुणों को हमने अपने अंदर विकसित करना है। ये है भगवान का। और जब हम धर्म की स्थापना का अर्थ ही यही है कि हम सब इन गुणों को अपने में विकसित करें, यही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और जब हम अपने गुणों को अपने विकसित करेंगे, तब हम इस योग्य बन पाएंगे कि हम भगवान के धाम जा पाए। तो ये भगवान के असंख्य गुण होने का कारण है। और दूसरे से आगे सनातन गोस्वामी जी को बहुत सी बात बताते हैं कि भगवान के अंदर असंख्य गुण क्यों हैं। भगवान के अंदर असंख्य गुण इसलिए हैं कि इस धराधाम में असंख्य जीवात्माएं हैं, और हरेक जीवात्मा का भगवान से विशेष संबंध है, और हरेक जीवात्मा भगवान के किसी एक गुण से आकृष्ट होती है। तो हरेक जीवात्मा को अपने प्रति आकृष्ट करने के लिए भगवान के अंदर असंख्य गुण हैं, क्योंकि असंख्य आत्माएं हैं। भगवान के अंदर असंख्य गुण इसलिए हैं कि वो असंख्य आत्माओं को अपने प्रति आकर्षित कर सके। हर एक जीवात्मा भगवान के किसी एक विशेष गुण से आकर्षित हो जाती है, तो इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है मेरे पास सारा स्टोर है, चलो तुम्हें एक गुण अच्छा लग रहा है इससे आकर्षित हो जाओ, तुम इससे आकर्षित हो जाओ। इसलिए भगवान कितने कृपालु हैं देखिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि अगर हम भगवान की लीलाओं की चर्चा करते हैं तो भगवान की लीलाओं की चर्चा करने से हमारे में जितने भी अनर्थ हैं वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे पूतना का वध हम सुनेंगे, पूतना के वध से जो हमारे अंदर हिपोक्रेसी दोगलापन है वो समाप्त हो जाता है। केशी वध की घटना सुनेंगे तो हमारे अंदर धोखा देने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाती है। तो इस ढंग से जब अनर्थ हमारे समाप्त होते हैं तो फिर हमारे अंदर भी भगवान के जो देवी गुण हमारे अंदर प्रकट होना शुरू होते हैं। तो ये है भगवान के गुणों का अभिप्राय। और इसीलिए हम मनुष्य जीवन को हमें हमारा उद्देश्य यही है कि भगवान का उद्देश्य आने ही का यहाँ पे है कि अपने गुणों को प्रकट करें, और हमारा ही उद्देश्य है कि हम उन गुणों का गुणगान करें ताकि उन गुणों के गुणगान से हमारे अंदर वो गुण हमारे में प्रकट हो और फिर हम भगवान के धाम वापस जा सके। तो भगवान की गुणगान हमेशा से होता आया है। गोलक वृंदावन में भी भगवान का गुणगान हो रहा है, राधा रानी जी हमेशा भगवान का गुणगान कर रही है, लेकिन गुणगान करते करते कभी थकती नहीं है। राधा रानी हमेशा कृष्ण 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 पुकार रही हैं, लेकिन जब भी वो कृष्ण का नाम लेती हैं उनको लगता है अरे ये नाम तो मैं शायद पहली बार ही ले रही हूँ, इतना नया है ये नाम। हर बार उनको लगता है कि ये पहली बार मैं नाम ले रही हूँ। तो इतना नवीन है भगवान, इतने भगवान में गुण है कि भगवान असंख्य असीमित गुण है, इसलिए हमेशा नए प्रकट होते हैं हमेशा। और जब भगवान को सृष्टि की रचना करनी होती है, सृष्टि की रचना भी भगवान के गुणगान से शुरू होती है। जब प्रलय हो जाती है तो गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में पूरी की पूरी सृष्टि समा जाती है और बहुत लंबे समय के लिए भगवान विश्राम करते हैं, निद्रा में चले जाते हैं। अब उनको निद्रा से जगाने के लिए सारे के सारे श्रुति और वेद इकट्ठे होते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की दिव्य लीलाओं की चर्चा करते हैं। कृष्णा की पुस्तक में बताया गया है कि सारे वेद भगवान की इस तरह से चर्चा करते हैं, गुणगान करते हैं, जैसे एक राजा हो और राजा सो रहा हो और आज सोते हुए राजा को जगाने के लिए पूर्व काल में उनके गायक आते थे और गायक बड़े ही मधुर ध्वनि में राजा का गुणगान करते थे, उसकी बहादुरी का उसकी वीरता का गुणगान करते थे, और अपनी वीरता और बहादुरी का गुणगान सुनते सुनते धीरे धीरे राजा निद्रा से जागता था। उसी ढंग से सारे के सारे वेद गर्भोदक्षाई विष्णु के आसपास खड़े हो जाते हैं और गर्भोदक्षाई विष्णु जी का गुणगान करते हैं। वो कहते हैं कि आप ईषद ऐश्वर्य पूर्ण है, लेकिन आपके जो अंश हैं, जो जीवात्माएं हैं, वो आपसे विद्रोह कर बैठी हैं, वो आपसे अलग होकर आनंद प्राप्त करना चाहती हैं, इसलिए वो अपने असली सच्चित आनंद रूप को भूल कर प्रकृति के तीन गुणों में फंस गए हैं। अब इन जीवों का उद्धार करने के लिए आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो धीरे धीरे जब भगवान के गुणों का वर्णन करते हैं तो भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। और वह सृष्टि की रचना का उद्देश्य यही है कि हम भगवान के गुणों का गुणगान करके अपना अपने आप को शुद्ध करें और फिर भगवान के धाम हम वापस जाएं। तो ये पूरे के पूरे जो भगवान के गुण हैं उसके पीछे ये अभिप्राय है और हम बद्ध जीव इनका गुणगान नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हम गुणगान बंद करते हैं, जैसे कि श्री प्रभुपाद जी ने बताया, हमें अपनी क्षमता के अनुसार ये करना है। जिस तरह से आकाश असीमित है लेकिन हर पक्षी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार आकाश में उड़ता है, उसी ढंग से हम सबको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार भगवान का गुणगान करना है। लेकिन कैसे करना है? गुरु साधु और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार। यहाँ पर जो गायक लोग हैं वो गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में यह शब्द आया है मुनि चोदिता। मुनि चोदिता का अर्थ है मुनियों के आदेश पर, मुनियों के आदेश पर ये गायक लोग गुणगान कर रहे हैं। इसी ढंग से हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने कहा है, स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हो सारे देश, कि हम सबको गुरु बनना है। और खासकर जो भारत भूमि है, भारत भूमि ने हिले मनुष्य जन्म जात, जन्म सार्थक करी कर परोपकार, तो हम सबको तो भगवान का गुणगान अवश्य ही करना है, जितनी हमारी क्षमता है तो करना ही करना है। तो हम अगर गुरु साधु और शास्त्रों के आदेशों के अनुसार भगवान का गुणगान करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। जब हमारा शुद्धिकरण होगा तब भगवान अपने आप को हमारे हृदय में प्रकट करेंगे। भौतिक जगत में जब हम किसी नेता, अभिनेता, क्रिकेट स्टार का गुणगान करते हैं तो पहले हम उसके गुणों को देखते हैं। हाँ जी, इस क्रिकेटर ने शतक बनाया, तब हम उसका गुणगान करते हैं। हम पहले कार्य को देखते हैं, फिर गुणगान करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम भगवान तो असीमित हैं, हम भगवान की लीलाओं को, दिव्यता को बिल्कुल समझ नहीं पा रहे, क्या करें? गुणगान प्रारंभ कर दो। जब गुणगान प्रारंभ करेंगे, हमारा हृदय शुद्ध होगा, तब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित है, तब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होगा। अन्यथा आप बोलेंगे, नहीं जी, हमें क्या मालूम भगवान के पालू हैं, हमें क्या मालूम भगवान भक्त वत्सल हैं, ये सब कहने की बातें हैं, हम कैसे समझ जाएंगे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया? समझ ही नहीं पाएंगे। पहले समझूंगा, फिर गुणगान करूंगा, क्योंकि हम भौतिक जगत में ये हमारी आदत है कि पहले हम देखते हैं, फिर हम गुणगान करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में हम जब गुणगान शुरू करेंगे, तब भगवान की कृपा से हमारा शुद्धिकरण होगा और फिर दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकट होगा। इसलिए गुरु, साधु और शास्त्रों के अनुसार हमें भगवान का गुणगान अवश्य करना चाहिए। देखिए, श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज का आदेश था कि विदेशों में जाकर चैतन्य महाप्रभु के संदेश का गुणगान करो। और श्रीला प्रभुपाद जी जब अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी। आप सबको मालूम है बहुत लंबी कविता है, पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ इसको बोलते हैं मार्किनो भगवत धर्म, भागवत धर्म, मार्किने भागवत धर्म। इसमें से दो बहुत अच्छी बातें हैं। एक में कह रहे हैं, अखिल जगत गुरु वाचन से आमार, अलंकृत कारी बार खमात तोमार, तब कृपा हैले मोर कथा शुद्ध हबे, सुनिया शबार शोक दुखी जा जय गुची बे। इसका अर्थ ये है कि ओ आदि गुरु, अखिल जगत गुरु और पूर्ण विश्व के गुरु, मैं तो केवल आपके संदेश को दोहरा सकता हूं। अगर आप चाहें तो आप मेरी वाक शक्ति को इन लोगों की समझ के लिए ठीक कर दें। जो मेरी वाक शक्ति है वो इन लोग, ये लोग समझ पाए, मैं तो क्या करूंगा, केवल आपके संदेश को दोहराऊंगा। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जब वहां देखे, जब श्रील प्रभुपाद जी पानी के जहाज से उतरे जलदूत से, तो देखकर बिल्कुल विस्मित हो गए। रजोगुण और तमोगुण का इतना जबरदस्त प्रभाव, तो बोले ये लोग मेरी बात को क्या समझेंगे। तो प्रभुपाद जी अपने आप को बिल्कुल असमर्थ समझ रहे हैं, और असमर्थ समझ के वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जगत गुरु हैं, आप मुझे शक्ति दें कि मेरे मुख से जो वाक्य निकले इसको ये लोग समझ पाए, क्योंकि मैं कुछ अपनी बात नहीं कहूंगा, मैं तो केवल आपके संदेश को दोहराऊंगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द शुद्ध होंगे, आपकी अहेतु की कृपा से ही मेरे शब्द शुद्ध होंगे, और मैं निश्चित हूं कि जब यह दिव्य संदेश उनके हृदय को छिड़ता हुआ उनके पास पहुंचेगा तो उनको आनंद की अनुभूति होगी और फिर वो इस दुखी जीवन से मुक्त हो पाएंगे। तो ये भाव हमारा होना चाहिए। जब हम भगवान का गुणगान करने निकले तो हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आपकी कृपा से आप मेरे वचनों को शुद्ध करें, ताकि मेरे मुख से जो वाक्य निकले वो बिल्कुल यथारूप हो, मैं केवल आपके संदेश को ही दोहरा पाऊं, और उन वाक्यों को सुनने से सबके हृदय को शुद्धिकरण हो और सबके सब आपके प्रति आकर्षित हो और इस दुखमय भौतिक जीवन से सबका उद्धार हो सके। तो श्री प्रभुपाद जी जो कि स्वयं शक्ति अविशेष अवतार है, जिस ढंग से यहाँ पर महाराज पृथु शक्ति अविशेष अवतार हैं और उनका गुणगान किया जा रहा है, इसी ढंग से श्री प्रभुपाद जी कोई बद्ध जीव नहीं है, श्री प्रभुपाद जी शक्ति अविशेष अवतार हैं, वो भी महात्मानस्त माम वर्षा देवी प्रकृति माश्रिता, वो भी भगवान की अंतरंगा शक्ति के अधीन है। सततम कीर्तयन्तो मा यदन पश्य दृढ़ता, हमेशा कीर्तन करते हैं, ये उनके लक्षण है। तो श्रील प्रभुपाद स्वयं शक्ता विशेष अवतार है, लेकिन वो उदाहरण के लिए दिखा रहे हैं कि अगर मुझे प्रचार करना है तो मुझे पूर्ण रूप से अपने आप को असहाय समझते हुए भगवान की अहेतु की कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा पूर्ण रूप से। और जहां कोई प्रचारक के अंदर ये भाव आ गया कि देखो मैं प्रचार कर रहा हूं, अरे हमारे में क्या शक्ति है कि हम प्रचार कर पाए। जब भी कोई वक्ता बोलता है तो वक्ता नहीं बोल रहा, पूरी की पूरी गुरु परंपरा बोल रही है। तभी श्रील प्रभुपाद जब कहते थे तो ये नहीं कहते थे मैं ये कह रहा हूं, कहते थे हम. यू ऑलवेज यूज द वर्ड वोई, यू नेवर से आई. वोई वोई का मतलब ये नहीं है कि अहंकार वश बोल रहे हैं हम, नहीं. इसका मतलब है कि वो अकेले नहीं बोल रहे, पूर्व गुरु परंपरा बोल रही है. ये मेरा आदेश नहीं है, मेरा संदेश नहीं है, पूरी गुरु परंपरा का ये संदेश है. इसलिए वो कहते थे हम, कि मैं अकेला ये नहीं कह रहा, पूरी गुरु परंपरा इस बात को दोहरा रही है. तो ये श्री प्रभुपाद जी के भाव थे, पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुक कृपा पर हमें निर्भर रहकर भगवान का गुणगान करना चाहिए. और जब हम भगवान का गुणगान प्रारंभ करते हैं तो भगवान स्वयं हमें शक्ति देते हैं. श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं, इसके बहुत से उदाहरण है. जैसे पहले महाप्रभु ने महाप्रकाश लीला की तो उन्होंने अपने सारे भक्तों को बुलाया और बुलाया खोला बेचा श्रीधर को. खोला बेचा श्रीधर बहुत ही दरिद्र, उनकी धोती में पता नहीं कितने छिद्र होते थे. पूरी रात हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहते थे, कीर्तन करते रहते थे, सोते नहीं थे, लेकिन भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे. तो खोला बेचा श्रीधर को सारे भक्त लोग उठा के लाए कि तुम्हें चैतन्य महाप्रभु ने बुलाया. तो ये सुनते ही वो मूर्छित हो गए थे. तो मूर्छित अवस्था में सारे भक्त उनको उठा के लाए और चैतन्य महाप्रभु के सामने रख दिया. तो लेटे हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने उनका स्पर्श किया तो खोला बेचा श्रीधर वापस बाह्य चेतना में आए. और फिर चैतन्य महाप्रभु ने अपना सुंदर श्याम सुंदर त्रिभंग रूप दिखाया खोला बेचा श्रीधर को और ने कहा हे श्रीधर तुम मेरा गुणगान प्रारंभ करो. खोला बेचा श्रीधर जो रात दिन भगवान का कीर्तन करते थे, अपने सामने देख रहे हैं स्वयं साक्षात त्रिभंग श्याम सुंदर कृष्ण खड़े हैं, तो कहते हैं भगवान मेरे में क्या क्षमता है मैं आपका गुणगान कर सकूं, मुझे तो कोई ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं मालूम, मैं कैसे आपका गुणगान कर सकूंगा. चैतन्य महाप्रभु ने कहा चिंता मत करो, साक्षात सरस्वती तुम्हारी जीवा पर बैठी है, तुम मेरा गुणगान प्रारंभ करो. और फिर खोला से श्रीधर ने अपना गुणगान प्रारंभ किया और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं गाई. तो देखिये चैतन्य महाप्रभु ने उनको शक्ति दी कि स्वयं सरस्वती तुम्हारी जीवा पर बैठी है, तुम गुणगान प्रारंभ कर दो. इसी ढंग से जब नित्यानंद प्रभु जी ने जगाई मधाई का उद्धार किया तो मधाई को बहुत पछतावा हुआ था और मधाई नित्यानंद प्रभु के पास गए और वो कहते थे कि मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, मैं तो गुणगान कैसे करूं, मैं तो सारे पाप में कार्य करता रहा, अब मैं आपको कैसे गुणगान करूं. तो नित्यानंद प्रभु ने भी उनको शक्ति दी और सरस्वती माता उनकी जीवा पे बैठी और मघाई मघाई जैसा पापी व्यक्ति जिसने केवल अपने जीवन में पाप ही पाप किए थे वो स्वयं नित्यानंद प्रभु जी का गुणगान कर रहा है. तो जब हम श्री प्रभुपाल लिख रहे हैं ना तात्पर्य में कि जब हम गंभीर और निष्ठावान भक्त होते हैं तो भगवान सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करते हैं. हमें केवल गंभीर और निष्ठावान होना है, गुरु के प्रति पूर्ण रूप से आश्रित होना है, तो निश्चित रूप से हमारी वाणी से सही प्रार्थनाएं निकलेंगी, सही गुणगान होगा. लेकिन हमें गुणगान करना है गुरु साधु और शास्त्र पर आश्रित होकर. जो कर्मी और ज्ञानी लोग हैं वो जब भगवान का गुणगान करते हैं तो वो भगवान के प्रति अपराध कर बैठते हैं. इसका बहुत सुंदर उदाहरण है चैतन्य चरितमृत की अंत लीला में बहुत सुंदर कथा आती है. बंगाल में एक ब्राह्मण थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में एक नाटक लिखा और वो चाहते थे कि नाटक मैं चैतन्य महाप्रभु को दिखाऊं. तो वो नाटक लेकर गए पुरी में, उनकी जान पहचान थी भगवान आचार्य जी से, तो उनके जानते थे और उनके घर में ही रहे और भगवान आचार्य जी को उन्होंने वो नाटक दिखाया तो भगवान आचार्य जी को बहुत अच्छा लगा. उन्होंने दूसरे भक्तों को दिखाया, सबने कहा अति उत्तम अति उत्तम, ये तो बहुत ही अच्छा है. तो सबने कहा चलो चैतन्य महाप्रभु को ये नाटक दिखाते हैं. लेकिन उस समय चैतन्य महाप्रभु ने पद्धति बना रखी थी कि कोई भी नाटक या कोई भी श्लोक या कोई भी भजन अगर कोई लिखता है मेरे पास आप तभी लेके आएंगे, मेरे पास लाने से पहले आपको स्वरूप दामोदर जी को दिखाना पड़ेगा, अगर स्वरूप दामोदर जी इसको पास कर देंगे तब मैं इसको देखूंगा अन्यथा नहीं. तो ये सदाचार उन्होंने स्थापित कर दिया था. तो भगवान आचार्य आए स्वरूप दामोदर जी के पास, बोले कि बंगाल से एक ब्राह्मण आए हैं, बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, उन्होंने बहुत सुंदर नाटक लिखा है, आप इसको देखो. तो स्वरूप दामोदर उनको डांटते हैं, अरे बोलते तुम तो एक ग्वाले हो, तुम्हें तो बस कोई भी कविता अच्छी लगती है, भगवान का गुणगान करना इतना आसान है क्या? भगवान का गुणगान करने के लिए उसको पूर्ण रूप से चैतन्य महाप्रभु पर आश्रित होना चाहिए, ऐसे कोई भी गुणगान नहीं कर सकता. तो उसने बोला नहीं 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 आप पढ़ के देखिए, एक बार तो सुन के देखिए, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है. जब बहुत बार उन्होंने निवेदन किया तो स्वरूप दामोदर जी ने ठीक है मान लिया. तो सारे भक्तगण इकट्ठे हो गए और उस कवि को बुलाया गया, उस ब्राह्मण को, और उस ब्राह्मण ने इस श्लोक सुनाया। उसकी जो पहले ड्रामे का जो भूमिका थी, भूमिका सुनाई। तो इससे पहले श्री दामोदर ने बता दिया था कि कोई भी ड्रामा होना चाहिए उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो रूप गोस्वामी जी का ड्रामा है। रूप गोस्वामी जी ने भी ड्रामे लिखे थे। कौन कौन से लिखे थे? उज्जवल नीलमणि और विदुर माधव। तो बोले वो जो ड्रामे थे वो बिल्कुल मानक है, स्टैंडर्ड है, उन्हीं के अनुसार होने चाहिए। लेकिन बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो सुनने बैठे, तो सुनने बैठे तो उसमें श्लोक ऐसा था, विकच कामल नेत्र श्री जगन्नाथ समग्गे कनक रुचित इहात्मनि आत्ममम या प्रपन्ना प्रकृति जड़म अशेषम चैतन्य वारसे सादिष्टो तव भव्ययम कृष्ण चैतन्य देवः। इसका अर्थ ऐसा है कि परम पुरुषोत्तम भगवान ने गौर रंग अपना लिया है और अब वो, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा श्लोक है, इसे गलती तो आप ढूंढ पाएंगे। बोल रहे हैं कि परम पुरुषोत्तम भगवान ने गौण वर्ण धारण किया है और अब वो एक शरीर जिसका नाम जगन्नाथ है उसकी आत्मा बन गए हैं, हैं? और उस जगन्नाथ की आंखें कमल के समान फैली हुई हैं। और क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए हैं, इन्होंने जड़ पदार्थ में भी जीवन ला दिया है, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं नमस्कार करता हूं। तो ये श्लोक उन्होंने सुनाया, सब लोगों ने कहा वाह क्या श्लोक है, क्या श्लोक है। लेकिन स्वरूप दामोदर ने कहा कि यार दोबारा सुनाइए, जरा इसका वर्णन करो। उन्होंने बोला, कवि कहे जगन्नाथ सुंदर शरीर चैतन्य गोसाई शारीरी महाधीर। बोले कवि ने कहा कि जगन्नाथ जी का बहुत सुंदर शरीर है और चैतन्य महाप्रभु जो बहुत धीर हैं इस शरीर के मालिक हैं। समझ आई बात? कि जगन्नाथ जी एक सुंदर शरीर हैं और चैतन्य महाप्रभु इस शरीर के मालिक हैं। जैसे कि भगवान गीता में कह रहे हैं दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनमिरा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे, कि एक देही है और एक देह है। उसी ढंग से बता रहे हैं, देह है जगन्नाथ जी और देही इसके मालिक हैं चैतन्य महाप्रभु। तो जब ये सुना, बाकी सब लोग तो खुश थे, लेकिन स्वरूप दामोदर जी को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में बोले, आर मूर्खे आपनार कली सर्वनाश, दुई से ईश्वर तार नाहिक विश्वास। करे मूर्ख, तूने तो इतना बड़ा दुर्भाग्य कर दिया, तुम्हें मालूम ही नहीं है कि दो भगवान कौन है, तुम्हें विश्वास ही नहीं है जगन्नाथ में और चैतन्य महाप्रभु में, नंबर एक के मूर्ख हो तुम। फिर वो समझाते हैं कि जो चैतन्य ये जगन्नाथ जी हैं, इनका जो शरीर है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, चिन्मय है, इसको तुमने क्या, इसकी तुलना किससे की? एक जड़ शरीर से, कि तो लकड़ी का है, जड़ शरीर है। तो आगे तात्पर्य श्लोक लिख रहे हैं, जो पद्म पुराण में लिखा गया है कि जो भगवान के विग्रह को भगवान से अभिन्न समझते हैं वो नरक गामी है। फिर वो बता रहे हैं आगे कि जो चैतन्य महाप्रभु है वो षट ऐश्वर्य पूर्ण है, लेकिन तुमने इसकी तुलना क्या की कि वो शरीर के मालिक हैं, इस जगन्नाथ जी की आत्मा है। अरे वो आत्मा नहीं, परमात्मा है। आत्मा तो एक चिंगारी होती है और परमात्मा पूरी अग्नि है। तुमने पूरी अग्नि को चिंगारी बता दिया और जगन्नाथ जी दिव्य शरीर है उसको जड़ शरीर बता दिया। तुमने दोनों के प्रति अपराध कर दिया। तो फिर उसके बाद स्वरूप दामोदर उसको खूब डांटते हैं और बताते हैं तुम नरकगामी बनोगे, और बताते हैं कि तुम पूर्ण रूप से भ्रम में हो, तुमने जाना ही नहीं कि भगवान और भगवान का शरीर भिन्न अभिन्न है, तभी भगवान अद्वैत कहलाते हैं। तो इस तरह से उनको डांटते हुए जब पहुंचते हैं तो सारे के सारे भक्त लोग बोलते हैं, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक कही है, अब सबको समझ में आई बात। उससे पहले सब गुणगान कर रहे थे और फिर उन्होंने बताया उस बंगाली ब्राह्मण को कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अगर चैतन्य महाप्रभु इसको सुनेंगे तो उसको कितना दुख होगा। बताया गया है जब चैतन्य महाप्रभु मायावादी भाषा सुनते थे तो उनको ऐसे लगता था कि उनकी पीठ पर कोई गरम गरम लोहे की सांखें, क्या बोलते उसको, सलाखें मार रहा हो। उनको ऐसा महसूस होता था कि वो भगवान के शरीर को कोई भौतिक बताता था तो उनको लगता था गरम गरम लोहे की सलाखें उनकी पीठ पर कोई मार रहा हो। तो बोले इतना बड़ा तुमने अपराध किया। और बताया जब उन्होंने स्वरूप दामोदर से इतनी डांट खाई तो ब्राह्मण बड़ा उदास हो गया, उसने बड़े उत्साह से लिखा था और इतनी डांट उसको पड़ गई। अब सरू दामोदर बहुत दयालु हैं, तो समझ गए ये ब्राह्मण हताश हो गया। उन्होंने बोला कि अगर आप वास्तव में श्रीमद् भागवतम सुनना चाहते हो तो तुम्हें एक स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी ये दिव्य ज्ञान तुम्हें समझ में आएगा। तो तुम्हें चैतन्य महाप्रभु की शरण, चरणों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और फिर बताया कि तुम चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का लगातार संग करो और फिर तुम्हें ये ज्ञान समझ में आएगा। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा हालांकि तुमने बहुत उल्टी सीधी बातें लिखी हैं जो कि भक्ति के नियमों के बिल्कुल विरुद्ध हैं, लेकिन ये बात सुनिए, बड़ी आश्चर्यजनक बात है, इससे मालूम चलता है कि भगवान कितने कृपालु हैं। बोले तुमने तो रसाभास किया, बिल्कुल भक्ति के नियमों के विरुद्ध बातें की, लेकिन माता सरस्वती ने क्या किया, तुम्हारी इन्हीं शब्दों को लेकर भगवान के गुणगान में प्रयोग कर लिया। माता सरस्वती ने तुम्हारी इन्हीं उल्टी सीधे शब्दों को लेकर भगवान के गुणगान में सही प्रयोग कर लिया। तो उसके उदाहरण देते हैं सरू दामोदर कि तुमसे पहले बड़े बड़े असुर ने, शिशुपाल ने, जरासंध ने, यहां तक कि देवताओं के राजा इंद्र ने भी यही गलती की, उन्होंने भगवान को उल्टी सीधी बातें कही। लेकिन माता सरस्वती क्या करती है, उन्हीं शब्दों को लेकर भगवान के गुणगान में लगा देती है। तो ये एक बताते हैं इंद्र के बारे में। जब गोवर्धन लीला हुई तो इंद्र के लिए जो यज्ञ हो रहा था, तो कृष्ण ने बोला इनके लिए यज्ञ क्यों करते हो, मेरे लिए यज्ञ करो। तो इंद्र ने क्रोध में आके क्या बोला था, वाचालम बलिशम स्तब्धम अज्ञम पंडित मानिनम कृष्णम मातयम उपश्रित्य गोपा में चकुर अप्रियम। बोले कृष्ण ने बोला था वाचालम, ये जो कृष्ण है बड़ा वाचाल है, चप्पल बालक, चंचल बालक है, बहुत बोलता है ये है, और ये साधारण व्यक्ति है, बहुत बोलता है, बच्चा है, जिद्दी है, मूर्ख है, और अपने आप को सोचता है बहुत पंडित हूँ, पंडित माने नाम, वाचलम है, चपल है, बालिशम है, स्तब्ध यानी कि मूर्ख है, और फिर भी क्या बोलता है, पंडित माने नाम, अपने आप को पंडित मानता है, ठीक है ना। ये शब्द उन्होंने बोले इंद्र में क्रोध में आकर। लेकिन माता सरस्वती ने इसको कैसे लिया, वो बोलते हैं वाचलम है, वाचल का अर्थ वो है कि ऐसा व्यक्ति जो वेदों के अनुसार बोलता हो। अच्छा बालिशा, बालिशा का अर्थ है कि बहुत ही मासूम है। अच्छा और बोला फिर शब्दा, शब्दा का मतलब जिद्दी यानी कि किसी के अहंकारी, घमंडी। तो बोले शब्दा का अर्थ होता है कि जो किसी को भी नमस्कार ना करे, यानी कि सब उसको नमस्कार करें। तो बिल्कुल माता सरस्वती ने कैसे शब्दों कहा, तो बोला अज्ञ, अज्ञ का अर्थ ये है कि उसके द्वारा कुछ भी अज्ञ नहीं रहता, वो सब कुछ जानता है, नथिंग इज अननोन टू हिम, सब कुछ उसको ज्ञेय है, कोई उसके लिए अज्ञ नहीं है। तो इंद्र ने दी उनको गालियां, लेकिन माता सरस्वती ने उन्हीं गालियों को भगवान के गुणगान में प्रयोग कर लिया। फिर जरासंध, अच्छा पंडित मानी ना, क्या क्या था कि पंडित मानने का अर्थ है पंडित मानी, यानी कि बड़े बड़े पंडितों के द्वारा ये माने जाते हैं, कि बड़े बड़े पंडितों के द्वारा माने जाते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जैसे जरासंध है, जरासंध ने भगवान को बोला था पुरुष अधम, कि तुम सब पुरुषों में भी सबसे नीच हो। तो इसका क्या मतलब निकाल लिया माता सरस्वती ने,